नमस्कार, खुशामदीद, स्वागत। आप सुन रहे हैं हिंदी गानों का कार्यक्रम देसी जायका रेडियो फ्री नेशवल पर। आपके साथ मैं हूँ पूजा और कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को पूजा का प्यार भरा नमस्कार। एक और इतवार, एक और देसी जायका का कार्यक्रम और एक और कहानी के साथ हाजिर हूँ मैं पूजा आपके लिए। आज की कहानी एक नायिका की, एक ऐसी हिंदी सिनेमा की नायिका जो अपने समय की सफलतम अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। शोक, चंचल, खूबसूरत और जिन पे फिल्माए गए गाने एक से एक मीठे हैं, तो उनकी कहानी के साथ साथ आपको दी बेस्ट मेलोडीज सुनने को आज मिलने वाली हैं। और ये कमसिन सी अभिनेत्री कौन है जिनका कि हम आज जिक्र करेंगे, आपको बताते हैं इस गाने के बाद। सुनिए।
मैं कमसिन हूँ, नादा हूँ, नाजुक हूँ, भोली हूँ, मैं कमसिन हूँ।
गाना सुन के बहुत सारे लोग समझ ही गए होंगे कि हम आज किन की बात करने जा रहे हैं। और ये जो भोली, कमसिन, नादान सी एक्ट्रेस जिनकी हम आज बात करने जा रहे हैं, कितना भी सोचिए कि आप उनके प्यार में ना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम आज बात कर रहे हैं बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सायरा बानो की। और ये जो अभी हमने गाना सुना, ये था 1964 की फिल्म आई मिलन से की बेला से। हसरत के इसमें बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था, आवाज़ें, मैंने दो गानों को आधा आधा मिक्स किया था, तो लता मंगेशकर और रफ़ी जी की। और इस गाने में पर्दे पर थीं सायरा बानो और उनके साथ राजेंद्र कुमार। अब आज के कार्यक्रम में हम सायरा बानो का जिक्र क्यों कर रहे हैं? ना तो उनका बर्थडे है, ना ऐसा कुछ है कि हम सायरा जी की आज खास बात करें, पर एक कारण है। याद है आपको, पिछले हफ्ते हमने दिलीप साहब की बातें करी थी। दिलीप साहब को गुजरे हुए एक साल पूरा हुआ था और हमने उन्हें ट्रिब्यूट देते हुए हम उनके गाने, उनकी बातें करी थी। और सायरा बानो जी दिलीप साहब की पत्नी हैं और सायरा जी पर मैंने कार्यक्रम पहले भी करने की सोची थी। और जब भी मैंने सायरा जी पर कार्यक्रम करने की सोची और उसके बारे में रिसर्च करनी शुरू की, मैं आपको बताऊं, मज़े की बात ये कि हर इंटरव्यू जो इवन स्पेसिफिकली सायरा जी के लिए शुरू होता था, सायरा जी की बातों से समहाउ वो बदल जाता था दिलीप साहब की बातों में। मतलब दिलीप साहब का अगर जिक्र हो तो सायरा ना हो, और सायरा की बात हो तो दिलीप कुमार ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। सायरा जी का, जैसे मैंने बोला ना, कि कोई भी इंटरव्यू ऐसा नहीं होता था जिसमें उन्होंने सिर्फ अपनी बात की हो। ऐसा लगता था उनका वजूद ही दिलीप कुमार के वजूद के साथ है। तो इसलिए दिलीप कुमार का प्रोग्राम हम लोगों ने लास्ट वीक किया था, तो इसलिए इस बार सायरा की बातें, सायरा जी की ज़िंदगी से जुड़ी मैं कुछ बातें जो लेकर आई हूँ, जो कहानियाँ लेकर आई हूँ, आपको बताती हूँ इस गाने के बाद।
भाई बत्तूर, भाई बत्तूर, अब जाएंगे कितनी दूर? भाई बत्तूर, भाई बत्तूर, अब जाएंगे कितनी दूर?
इस गाने में लता जी ने जो सायरा जी की शोखी और मासूमियत थी, दोनों ही चीज़ों को बहुत खूबसूरती से पकड़ा है। ये था 1968 की फिल्म पड़ोसन से, कॉमेडी मूवी थी। और अगर आपको उस तरह की लाइट मूवीज़ पसंद हैं तो देखें, मतलब इट्स अ गुड वन टू वॉच। इसमें बोल लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत था आर डी बर्मन का, आवाज़ एज आई सेड लता मंगेशकर, और पर्दे पर स्वीट सायरा बानो। आज के देसी जायका में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं द लाइफ स्टोरी ऑफ द फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस सायरा बानो की। सायरा बानो, जैसा मैंने पहले भी बताया, दिलीप कुमार जी की पत्नी है। और अनलाइक दिलीप कुमार, जो कि फिल्मों में ही आना नहीं चाहते थे और उन्हें लगता था उन्हें एक्टिंग नहीं आती, सायरा बानो जी बचपन से फिल्मों में आना चाहती थी और उनका उनकी जो फैमिली थी वो नहीं चाहती थी कि वो फिल्मों में आए, हालांकि उनकी उनकी फैमिली का बैकग्राउंड जो था वो पूरा पूरा फिल्म से रिलेटेड था। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सायरा जी का जन्म हुआ 23 अगस्त 1944 को मसूरी में। उनकी मदर थी नसीम बानो। नसीम बानो जो कि जिनको ब्यूटी क्वीन के नाम से जाना जाता था, फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार के नाम से जाना जाता था इंडियन सिनेमा में, और 1930s से 1950s के बीच में वो उन्होंने बॉलीवुड में काम किया। उनके पिता का नाम था मियां एहसान अल हक। बाय प्रोफेशन वो एक आर्किटेक्ट थे, लेकिन उन्होंने भी पाकिस्तान में भी और भारत में भी एक एक फिल्म प्रोड्यूस की थी। तो देखा जाए तो जो सायरा जी का फैमिली बैकग्राउंड था वो पूरा फिल्मी था। उनकी मदर फिल्म से थी, फादर का भी वो था, और जो उनकी नानी थी वो बहुत ही रेनाउंड क्लासिकल सिंगर थी और रेडियो सिलोन और ऑल इंडिया रेडियो के लिए वो गाया करती थी। इस तरह से उनका जो पूरा फैमिली बैकग्राउंड था एज आई सेड फिल्म से रिलेटेड था। लेकिन जब सायरा जी छोटी थी तभी उनके पेरेंट्स अलग हो गए थे और उनकी मदर अपने अपनी वालदा और अपने दोनों बच्चों को लेकर, सायरा जी के एक बड़े भाई भी थे, अपने दोनों बच्चों को लेकर वो लंदन शिफ्ट हो गई थी। तो सायरा जी का सारा बचपन जो था वो लंदन में बीता। अब लंदन में पढ़ने पलने बढ़ने वाली लड़की हिंदी सिनेमा के पर्दे तक कैसे पहुंची, ये किस्सा इस गाने के बाद।
उनकी पहली नजर क्या असर कर गई मुझको, क्या हो गया है खुदा जाने। उनकी पहली नजर क्या असर कर गई।
एग्जैक्टली यही तो उनकी फैमिली भी कह रही थी कि इनको क्या हो गया है खुदा जाने। ये गाना जो अभी हमने सुना ये था फिल्म अप्रैल फूल से। हसरत के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, आवाज़ लता मंगेशकर की, और पर्दे पर सायरा बानो। तो इस गाने पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि कैसे सायरा बानो जो कि अपनी मदर और अपनी ग्रैंड माँ के साथ बचपन में ही लंदन शिफ्ट हो गई थी, जिनकी पढ़ाई और पूरी तरबियत लंदन में हो रही थी, वो हिंदी फिल्म सिनेमा तक कैसे पहुँची। तो हुआ यूँ कि जो इनकी वालदा थी नसीम बानो जी, जिसे जिन्हें सायरा जी आपा जी कह के बुलाती थी, वो जब स्कूल की छुट्टियां होती थी वहाँ गर्मियों की, तो शी मेड अ पॉइंट कि दोनों बच्चों को लेकर यूरोप घुमाती घुमाती इंडिया आएं और गर्मी की छुट्टियां इंडिया में बिताएं, ताकि बच्चों को जो अपने संस्कृति है, उसकी जो रूट्स हैं, जो कल्चर है, वो उनको पता चल सके और बच्चे उसको अच्छे से समझ सके। तो ये सोच के वो अपने बच्चों को हर गर्मी की छुट्टियाँ यहाँ लाया करती थी इंडिया में, और उनकी सारी छुट्टियाँ यहाँ बीता करती थी। और इनकी फैमिली और दिलीप साहब की फैमिली एक दूसरे को जानते थे और आपस में उनकी बातचीत थी। नसीम बानो जो अपने टाइम की एक सुपरस्टार रही थी, वो सायरा जी का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि क्या ऐसी बात थी या उसके पीछे क्या इंटेंशन थी, बट वो कभी नहीं चाहती थी कि सायरा जी फिल्मों में आए। लेकिन सायरा जी को बचपन से ही फिल्मों में जाने का बहुत शौक़ था। जब ये लंदन में थी और बताती हैं कि ये बैले डांस की क्लासेस लेने जाया करती थी, तो जहाँ इनका वो डांस स्कूल था उसके पास वहाँ पर एक बड़ी मखसूस सी जगह थी जहाँ पर हिंदी फिल्मों के पोस्टर्स लगा करते थे, और ये घंटों खड़ी उन पोस्टर्स को देखा करती थी, उसके चेहरों को देखा करती थी, और इतना खो जाती थी कि शी स्टार्टेड इमेजिनिंग कि ये वो हैं, लोग उनके लिए तालियां बजा रहे हैं, वो डांस कर रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक जगह उनसे पूछा गया कि आपका फिल्मों में आना कैसे हुआ, क्योंकि आपकी मदर तो नहीं चाहती थी, और सायरा जी ने कहा, विच सम्स अप द होल जो मैं आपको ये पॉइंट बता रही हूँ, इट्स अबाउट द फॉरबिडन फ्रूट। जितना ज़्यादा उन्हें फिल्मों से दूर रखने की कोशिश की जा रही थी, उतना ही ज़्यादा उनका फिल्मों के लिए पागलपन बढ़ता जा रहा था। तो फिल्मों के प्रति जो उनका रुझान था वो तो मैंने बताया कि किस तरह से बढ़ रहा था। अब फाइनली उनका फिल्मों में आना कैसे हुआ ये बताती हूँ इस गाने के बाद।
एहसान तेरा हो गा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो।
दिल बिल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, दिल बिल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे, दिल बिल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, दिल बिल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे।
दोनों ही सुपरहिट गाने, जो पहला गाना था वो फ्रॉम जंगली से था, और जंगली क्यों इम्पॉर्टेंट है सायरा के करियर में वो हम आपको बाद में बताते हैं, पर पहले इन गानों के बारे में। पहला गाना जो था एहसान तेरा होगा मुझ पर, एक्चुअली ये फीमेल वॉइस में भी है, पर क्योंकि हम बहुत सारे गाने आज सायरा बानो की वजह से फीमेल वॉइस में सुनवा रहे हैं, तो मैंने सोचा इस गाने को रफ़ी जी की आवाज़ में सुनवाया जाए। इसके बोल लिखे थे हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का, और इसे पर्दे पर फिल्माया गया था शम्मी कपूर जी पर। और दूसरा गाना था फिल्म शागिर्द से, जिसके लिए सायरा बानो जी नॉमिनेट हुई थी बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस के लिए। इसमें बोल लिखे थे मजरूह ने, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गाने में आवाज़ें थीं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। इस बार पर्दे पर सायरा बानो के साथ थे जॉय मुखर्जी। अब वापस आते हैं, वह जंगली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूवी इन सायराज करियर। सो जब ये 16 साल की थी, इन्होंने अपना शायद जो इंटर के इक्विवेलेंट एग्ज़ाम होता है लंदन में वो दिया था, और एग्ज़ाम दे के ये छुट्टियों में यहाँ आई थी, और 1960 की बात है, 16 साल की थी। और उस वक्त कई सारे प्रोड्यूसर्स लाइनअप थे जो जानते थे कि ये नसीम बानो जी की बेटी हैं और फिल्मों में काम करना चाहती हैं, तो इनको इन्होंने ऑडिशन दिया और जंगली के लिए इनको सेलेक्ट किया गया। जंगली इनकी पहली मूवी थी। इनसे कई बार पूछा गया कि जंगली में सुपरस्टार शमी कपूर के ऑपोजिट आपको कैस्ट किया गया था और आप एकदम न्यू कमर थी, तो कैसा था? तो देयर इज़ अ इंसिडेंट जो सायरा बताती हैं जंगली में स्पेसिफिकली पहले दिन के शूटिंग के दौरान हुआ था, और कैसे सायरा बानो जी का जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत लड़खड़ाया था, और किस बात से वापस उन्होंने कमर कस ली थी और उस शॉट को जो कई बार के टेक में नहीं हो रहा था करके दिखाया था। वो एक गाने के बीच की एक लाइन थी, पहले आपको वो गाना सुनवा देते हैं और फिर बताते हैं उसकी कहानी। ये गाना था फिल्म जंगली से, इसमें हसरत के बोल और शंकर जयकिशन, आवाज़ लता ताई की। तो जो मैं आपको वाक्या सुनाने वाली थी वो ये कि इसमें एक जगह एक लाइन है, प्यार पे गुस्सा करते हो तेरा गुस्सा हमको प्यारा है, सेकंड स्टेंजा जो है। तो इसमें सायरा जी बताती हैं कि उनको पीट करके खड़े होना था, और जैसे ही ये लाइन शुरू होती है इस लाइन को कहते हुए पलटना था। सायरा जी कहती हैं कि वो शूटिंग का बिल्कुल शुरुआती दिन थे, और ये शुरू से थोड़ा सा शाय काइंड की थी, और अगर वहाँ पर जहाँ पर ये कश्मीर में शूटिंग हो रही थी बहुत सारे लोग चारों तरफ खड़े थे जो उनको देख रहे थे, और ऑफ कोर्स उनकी पहली शूटिंग थी तो ये और भी ज़्यादा कॉन्शियस थी। और जब इस गाने पर इन्हें ऐसे पलट के ये लाइन को एग्जैक्टली वैसे कहना था, प्यार पे गुस्सा करते हो तेरा गुस्सा हमको प्यारा है, बार बार हो ये रहा था कि अगर ये पलट टाइम से जा रही थी तो जबान लड़खड़ा रही थी और लिप सिंक नहीं हो रहा था, और अगर लिप सिंक हो रहा था तो पलटने में देर हो रही थी। कुछ ये सिलसिला चलता रहा और कई सारे टेक हो गए, तो शमी कपूर जी जो इनके को स्टार थे इस फिल्म में, उनको अचानक से गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि अगर ढंग से नहीं कर सकती हो तो छोड़ दो। इनकी माँ जो नसीम बानो जी वो भी सेट पे थी और वो जल्दी से इनके पास आई और बोली, मैंने तुमसे कहा था कि फिल्म तुम्हारे उसकी नहीं है, अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, तुम छोड़ दो ये सब। और सायरा बानो जी कहती हैं कि उनकी ये बात उनको सुन के लगा कि यार इतनी मुश्किलों से तो मैं पहली फिल्म में सेलेक्ट हुई हूँ, फिल्म शुरू हुई है, शूटिंग हो रही है और मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ, ऐसा मैं क्या कर रही हूँ जो गड़बड़ हो रहा है। और सायरा बानो जी का कहना है कि वो इस कदर इस चीज़ को चाहती थी बीइंग इन मूवीज़ कि उन्होंने अपने आप से कहा कि सायरा जस्ट सक इट अप और कमर में पल्ला खोंस के बिल्कुल रानी झांसी जैसे फील किया और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं ये सीन करूँगी, क्योंकि उन्हें लगा ये डू और डाई है, अगर नहीं किया तो जितनी उन्होंने फिल्मों में आने के सपने सजाए हैं सब बेकार हो जाएंगे। और सायरा बानो जी कहती हैं कि इस बात के बाद वो पूरे डिटर्मिनेशन के साथ अपने स्पॉट पे गई और जब टेक हुआ तो वो एक ही बार में फाइनल हो गया उसके बाद। तो ये कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत ही शिद्दत से पाना चाहें तो उसके लिए जो आपकी एफर्ट्स हैं ना वो भी बहुत फोकस्ड हो जाते हैं और कामयाबी तो आपको मिलनी ही मिलनी होती है। तो ये किस्सा रहा जंगली का। एक और बात जो इसी फिल्म से जुड़ी हुई है वो बताती हूँ, पर एक गाना और सुनवा लूँ आपको उसके बाद। One of my very favorite song, वो है ज़रा खफा खफा। ये था 1967 की फिल्म शागिर्द से, इसमें बोल लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने, इसमें संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और आवाज़ एक बार फिर मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। पर्दे पर इसमें थे सायरा बानो और उनके साथ थे जॉय मुखर्जी। सायरा जी अपने करियर में 3 बार बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट हुई, जिनमें की एक फिल्म थी जंगली, दूसरी थी शागिर्द और तीसरी थी सगीना, जो इन्होंने अपने हस्बैंड दिलीप कुमार साहब जी के साथ करी थी 1974 में, पर उसकी कहानी बाद में। तो मैं इस गाने पर जाने के पहले आपको बता रही थी कि जंगली जब इनकी मूवी रिलीज़ होने वाली थी उस वक्त का ये किस्सा है, मूवी बन गई थी ये अपनी वालदा के साथ कहीं मुंबई में शॉपिंग करने के लिए गई थी और जिस शॉप में शॉपिंग करने गई थी वो जो शॉप ओनर थे वो दिलीप साहब के बहुत ही बड़े फ़ैन थे और वो इनको भी पहचानते थे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपने अभी एक नई फिल्म की है तो वो कब रिलीज़ होने वाली है, और उस बारे में कुछ स्मॉल टॉक कर रहे थे। और सायरा बानो जी की जो मदर थी नसीम बानो, उन्होंने उनसे बोला कि बस अगले महीने रिलीज़ होने वाली है या अगले हफ्ते रिलीज़ होने वाली है, कुछ समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने कहा नहीं, अगले हफ्ते तो दिलीप साहब की गंगा जमुना रिलीज़ हो रही है और आप जानती हैं दिलीप साहब की फ़िल्म के साथ रिलीज़ होने का क्या मतलब है। तो ये दोनों चुप थीं। तो उन्होंने कहा अरे इसका मतलब ये है कि इस फिल्म को कौन देखेगा, दिलीप साहब की गंगा जमुना विल बी सुपर हिट और इस फिल्म को शायद उतना अटेंशन ना मिल पाए जितना मिलना चाहिए। अब सायरा बानो जी कहती हैं कि ये सुनते ही उनके तो आंसू आंसू हो गए कि यार ये क्या गड़बड़ हो गई, ये अगर दिलीप साहब की मूवी के साथ मेरी मूवी को कौन देखने जाएगा। लेकिन विद गॉड्स ग्रेस, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दोनों ही मूवीज़ गंगा जमुना और जंगली दोनों ही सुपर डुपर हिट मूवीज रहीं और सायरा जी का करियर जंगली से एक जो शुरू हुआ तो फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब वापस से, जैसे मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में भी कहा था कि सायरा जी की बात हो तो दिलीप साहब का जिक्र ना हो और दिलीप साहब की बात हो तो सायरा का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं जहाँ पे सायरा की दिलीप साहब के लिए दीवानगी शुरू हुई थी और वो किस्सा क्या था, पर इस गाने के बाद।
छोटी सी उम्र में लग गया रोग, छोटी सी उम्र में ही लग गया
छोटी सी उम्र में ये लग गया रोग, कहते हैं लोग कि मैं मर जाऊंगी। जो कहानी आपको बताने वाले हैं वो बिल्कुल अलोंग द सेम लाइंस ही है। ये गाना था फिल्म बैराग से, इसमें बोल थे आनंद बख्शी के, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, और इस गाने में आवाज़ थी लता मंगेशकर की, पर्दे पर सायरा बानो, और इस फिल्म में सायरा बानो के साथ थे उनके पति दिलीप कुमार साहब। बट ये जो कहानी है ये शुरुआती है। सायरा जी कहती हैं कि जब वो मात्र 12 साल की थी, और आपको याद है मैंने बताया था कि उनकी मदर उन लोगों को लंदन से, वो गर्मी की छुट्टियां मनाने वो लोग इंडिया आया करते थे, हिंदुस्तान आते थे, तो उस समय जब वो मात्र 12 साल की थी उन्होंने किसी पार्टी में दिलीप साहब को देखा था, और उस वक्त उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि अगर कभी मैं निकाह करूँगी तो इन्हीं से करूँगी, मेरा निकाह होगा तो दिलीप साहब से होगा। मेरे लिए तो आई एम नॉट सेइंग कि अच्छी या बुरी बात, लेकिन इसको सोचना आज के समय में कि 12 साल की बच्ची को इतना कैसे यकीन था कि बिल्कुल उन्हीं से शादी करेंगी। और खैर ओवर द ईयर्स एवरी टाइम व्हेन दे विजिट हिंदुस्तान, फिल्मी दुनिया से तो नसीम बानो जी का कनेक्शन था ही, तो दिलीप साहब से आमना सामना होता रहता था। एक बार ये लोग मुगले आज़म के सेट पर शूटिंग देखने गए थे और वहाँ पे दिलीप साहब एक बार फिर दिखे थे। इसी तरह से कई बार इनका सामना होता रहा और ये बात इनके जहन में बड़ी ही मतलब बैठ गई थी कि अगर मैं निकाह करूँगी तो सिर्फ दिलीप साहब से। और जब इनसे कई बार पूछा जाता है कि आपको कैसे पता था इतनी कम उम्र से और क्या चीज़ आपको दिलीप साहब की अच्छी लगती थी, तो भाई इनका कहना था कि मुझे ये नहीं पता कि मुझे कैसे पता था, बस मुझे पता था। और दिलीप साहब की जो सादगी थी, उनका जो एलिक्वेंस था, उनका जो उनके यू नो द वे ही कैरीज हिमसेल्फ, शायद वो इनको बहुत 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 अच्छा लगा था। एंड ऑफकोर्स वो सुपर स्टार थे हिंदी फिल्म सिनेमा के, तो दैट्स ऑल्सो एन अट्रैक्शन। तो इस तरह से उन्होंने इनको बसा लिया था मन में। लेकिन आप जानते हैं इन दोनों की उम्र में 22 साल का अंतर है, और इनकी इन्होंने कई बार कोशिश की, क्योंकि जंगली के बाद ये भी काफ़ी फेमस हो गई थी और अच्छी टॉप हीरोइंस में आ गई थी। उस समय 1963 से लेकर 69 के बीच में शी वॉज द थर्ड हाईएस्ट पेइंग एक्ट्रेस इन हिंदी सिनेमा, और इन्होंने बहुत बार दिलीप साहब के साथ काम करने की कोशिश की, पर दिलीप साहब हमेशा मना कर देते थे। और एक इंटरव्यू में जब ये पूछा भी गया कि क्यों ऐसा करते थे, तो उन्होंने कहा भाई एक तो ये बहुत छोटी थी और दूसरा इनके परिवार से हमारे बहुत नज़दीकी ताल्लुकात थे, और मुझे पता था कि इनका परिवार शुरू में पसंद नहीं करता था इनका फिल्म में काम करना, बल्कि उन्होंने तो मुझसे कहा था कि मैं इन्हें परसुएट करूं फिल्मों में काम ना करने के लिए, तो मैं अगर इनके साथ काम करता तो कैसा लगता। लेकिन खैर बाद में जब सायरा बानो जी पूरी तरह से फिल्मी दुनिया में सेटल हो गई थी, तब 3 फिल्म इन्होंने दिलीप साहब के साथ करी थी, और जिसमें कि गोपी, बैराग और सगीना, सगीना के लिए ये नॉमिनेट हुई थी एक बार फिर बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस के रूप में। चलिए लगे हाथ आपको सगीना फिल्म से ये एक बड़ा प्यारा सा गाना है सुनवाते हैं और फिर बातों का सिलसिला आगे जारी रखेंगे। कहते हैं ना इस गाने में गोरी फंस जाइयो पहन मोरा कंगना, और सायरा जी कहती हैं फिर भी रहूंगी मटकती तो रे अंगना। तो इस गाने के बारे में मैं आपको ज़रा बाद में बताती हूँ। 1966 में जब सायरा जी 22 साल की थी और उस समय दिलीप साहब की उम्र 44 साल थी, इन लोगों ने शादी कर ली और माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी शादी बहुत कामयाब रही। एक सुपर कपल के रूप में ये बॉलीवुड में देखे जाते थे और टिल डेथ डू अस अपार्ट उन्होंने अपनी शादी निभाई। 2021 में 7 जुलाई जब अभी दिलीप साहब का निधन हुआ और ये अपने पीछे सायरा जी को छोड़ गए, इनके कोई बच्चे नहीं हैं, बस सायरा जी और दिलीप साहब, एक प्रेम कहानी प्यारी सी। देर इज़ अ लॉट टू इट बट वो सब बातें बाद में। अब इस गाने के बारे में बता दूँ, ये था फिल्म 1974 की फिल्म सगीना से, इसमें संगीत था एस डी बर्मन का, इसमें बोल थे मजरूह सुल्तानपुरी के, और ये फिल्म इसलिए भी मार्क्ड करी जा सकती है अलग से क्योंकि ये इकलौता ऐसा टाइम था जब दिलीप साहब को रफ़ी की बजाय किशोरदा ने अपनी आवाज़ दी थी। वन एंड ओनली टाइम जब दिलीप साहब के लिए प्लेबैक किशोरदा ने किया था और इस गाने में आपने वो आवाज़ सुनी। तो गाने में आवाज़ें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, और पर्दे पर ऑफकोर्स सायरा बानो के साथ दिलीप कुमार साहब। अब बातों का सिलसिला वापस से सायरा बानो जी पर लाते हैं। सायरा बानो जी का कहना था कि उस वक्त जब ये फिल्म इंडस्ट्री में आई थी, इनके साथ वाली जो सारी हीरोइंस थी दे वर क्लासिकली ट्रेन्ड डांसर्स, सो और इनको डांस क्या, इनको तो उर्दू भी इनकी साफ नहीं थी क्योंकि ये लंदन में पढ़ी थी, तो इनके जो पढ़ाई का मीडियम रहा वो फ्रेंच और इंग्लिश था और इन्होंने एज अ लैंग्वेज लैटिन लिया हुआ था, तो उर्दू बोल समझ पाती थी बट जिस तरह से तलफ़ुज साफ होना चाहिए या वोकैबुलरी होनी चाहिए वो इनके पास नहीं थी। तो इन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम तो रख लिया था लेकिन अभी बहुत सारे जो चैलेंजेस थे वो इनको फेस करने थे और कॉन्कर करने थे। तो वो कैसे की वो बताऊंगी आपको इस गाने के बाद।
आज की रात ये कैसी रात के हमको नींद नहीं आती, मेरी जा आओ बैठो पास के हमको नींद नहीं आती।
What a sensuous song. ये था फिल्म अमन से, इसमें बोल थे शैलेंद्र के, संगीता शंकर जयकिशन का, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, और बीच बीच में द स्वीटेस्ट सेंशुअस वॉइस सायरा बानो की, और इसमें पर्दे पर सायरा बानो के साथ थे राजेंद्र कुमार। तो इस गाने पे जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि देर आर फ्यू चैलेंजेस। ऑफकोर्स सायरा जी नसीम बानो जी की बेटी थी तो सुंदरता के मामले में तो कोई कमी नहीं थी, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो सुंदरता के मामले के बलबूते पे ही फिल्म इंडस्ट्री में टिकी रहीं, लेकिन कुछ चैलेंजेस जिनके हम बात कर रहे थे, जो उस समय की एक्ट्रेसेस थीं मोस्ट ऑफ देम वर ट्रेंड क्लासिकल डांसर्स, और सायरा जी को डांस बिल्कुल नहीं आता था। सायरा जी की जो उर्दू और हिंदी थी वो भी बहुत साफ़ नहीं थी, तो बहुत जल्दी, बिकॉज सायरा जी जैसा मैंने पहले भी बताया कि बहुत फोकस्ड थी बीइंग इन मूवीज़ एंड बीइंग गुड इन मूवीज़, तो उन्होंने बहुत ही जल्दी अपनी इन शॉर्ट कमिंग्स को पकड़ लिया और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने उर्दू और हिंदी भाषा का को सीखना शुरू किया, उसका साफ तलफ्फुज़, उसका उच्चारण अच्छा कैसे कर सकते हैं, वोकैबुलरी कैसे बढ़ा सकते हैं, वो उस पर काम करना शुरू किया और साथ ही साथ अपने डांस पे भी किया। वो बताती हैं कि पहला जो डांस सीक्वेंस था वो फिल्म आई मिलन की बेला का एक गाना था, और उसमें सरोज जी और जो दूसरे डांस मास्टर थे उन्होंने बहुत ही प्यार से जो सायरा जी की लिमिटेशंस थी डांस को लेकर उसको ध्यान में रखते हुए उस गाने में उनको मूव्स दिए थे, बैले की तरह काफ़ी स्ट्रेट लाइन और हाथ के छोटे छोटे मूवमेंट्स। अगर आप कभी वो, मैं आपको गाना सुनवाती हूँ, अगर आप उस गाने के बाद कभी उसका वीडियो देखेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। लेकिन उस गाने के बाद से उन्हें, सायरा जी को ये पता चल गया था कि डांस सीखे बिना फिल्मों में ज़्यादा दूर तक जाना मुश्किल होगा। तो रोशन कुमारी जी थीं जिनसे इन्होंने डांस की डांस एक्चुअली सीखना शुरू किया, वो भी एक डांस मास्टर थीं और उन्होंने इनको हर तरीके के क्लासिकल डांस की थोड़ी थोड़ी जो उसे कहते हैं कि फेमिलियरिटी करवाई और सिखाया। सायरा जी कहती हैं डांस एक ऐसी कला है जो पूरे लाइफ टाइम सीख के भी आप उसको बिल्कुल 100% सीख नहीं सकते, लेकिन इनको तो ओवरनाइट सीखनी पड़ी बहुत सारी चीज़ें। उन्होंने कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, बहुत सारे क्लासिकल डांसेस को सीखा, और सीखा ही नहीं, पर्दे पर बहुत ही खूबसूरती के साथ परफॉर्म भी किया।
तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा।
पहला एक्चुअल डांस सीक्वेंस था जब इनको डांस नहीं आता था फिल्म आई मिलन की बेला से, इसमें हसरत के बोल शंकर जयकिशन का संगीत और आवाज़ लता मंगेशकर की थी। इसे फिल्माया गया था सायरा बानो पर जैसा मैंने आपको बताया कि बाद में इन्होंने क्लासिकल डांस विधिवत सीखा और बहुत सारी मूवीज़ में क्लासिकल डांस परफॉर्म भी किया। तो आज हमने बात की सायरा बानो जी के बारे में, हमने बात की कि कैसे बहुत कम उम्र से उनका फिल्मों की तरफ रुझान था, उनका परिवार नहीं चाहता था, फिर भी उनको इतनी शिद्दत से चाहती फिल्म्स में आने की कि आखिर उन्होंने बहुत कम उम्र में डेब्यू किया और बहुत सक्सेसफुल हीरोइन रहीं, बहुत मेहनत की अपने को सक्सेसफुल बनाने के लिए, जो भी उनको चैलेंजेस थे उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। उन्होंने शादी उनसे की जिनसे उन्होंने सोचा हुआ था, यानी कि दिलीप कुमार साहब के साथ। उन्होंने अपनी पूरी जो करियर स्पैन रहा उसमें ऑलमोस्ट 44 मूवीज़ की, और 1988 में उन्होंने फाइनली फिल्मों से अपना करियर वहाँ पे स्टॉप कर दिया। और एक इंटरव्यू में दिलीप साहब कहते हैं कि यूं तो मैं बहुत सादा इंसान लगता हूँ पर मैं अंदर से बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंसान हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे संभालने के लिए सायरा ने अपने इतने फ्लरिशिंग करियर को उस समय वाइंड अप कर दिया। पर सायरा जी का कहना है कि अगर उनको दोबारा ऐसा करना पड़े तो वो सेम चीज़ दोबारा करेंगी बिना किसी हिचक के, क्योंकि अपनों के साथ वक्त बिताना और जो परिवार को तरजीह देना, वक्त वक्त के साथ आपकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, और उसके साथ उन्होंने परिवार को चुना तो उनको ज़रा भी मलाल नहीं है कि उन्होंने अपने करियर की पीक पर अपने करियर को वाइंड अप कर दिया था इस तरह। तो आज जब दिलीप साहब नहीं हैं, सायरा जी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हैं। पिछले एक साल में कई बार वो इन एंड आउट हॉस्पिटल्स में रहीं, जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया कि उनके कोई बच्चे नहीं हैं, वो दोनों ही एक दूसरे के लिए थे। हम दुआ करते हैं कि सायरा बानो जी स्वस्थ रहें, अच्छी रहें, अपनी यादों में जिस तरह वो दिलीप साहब को रखती हैं हमसे और बातें बांटती रहें। अभी उन्होंने बहुत अच्छा एक ख़त जैसा लिखा है, जब पहली बरसी हुई थी दिलीप साहब की, तो बस इसी तरह वो ऊपर वाला उनकी सेहत बनाए रखें। और इसी ख्याल के साथ अब आज का कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। पूजा को इजाज़त, आपको छोड़ के जाती हूँ फिल्म जंगली की